हर खास चीज़ के लिए मुहदिस चाहिए, जो चीज़ हुई उसको कोई लाने वाला चाहिए होता है। तो जो चीज़ हुई वो मखलूक है, जो उसको लाने वाला है वो खालिक है। दुनिया का इतना बड़ा निज़ाम, इतना ज़्यादा मक्कम निज़ाम, इतना ज़्यादा पावरफुल निज़ाम, ये खुद से नहीं हो सकता। सूरज और चाँद का ये निज़ाम हज़ारों हज़ार लाखों करोड़ों सालों से सूरज वक्त पर निकलता है, वक्त पर डूबता है। चाँद का एक निज़ाम है, मौसमों का एक निज़ाम है, बादलों का निज़ाम है, सर्दियों का निज़ाम है, गर्मियों का निज़ाम है, ये खुद से नहीं हो सकता, इसको किसी ने किया है। एक बहुत बड़े आदमी, एक ऐसे आदमी ने जो अल्लाह को नहीं मानता, मुनाज़रा तय किया, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहस करूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया कि ठीक है, तो वो अल्लाह को नहीं मानता था। वक्त मुकर्र हो गया, ऐलान हो गया, बहुत पब्लिक जमा हो गई। जो आदमी बहस करने के लिए आने वाला था वो आ गया, लेकिन ये जो आलिम दीन थे ये नहीं आए। इन्होंने बहुत देर कर दी। जब बहुत देर कर दी तो उस आदमी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो घबरा गए, वो डर गए, वो बात करना नहीं चाहिए, वो आ गए, इसलिए वो नहीं आए। तो बहुत देर हुई तो आए, आते ही उन्होंने अपने देर से आने की माजरत चाही। नौकर उसके बाद में कहा कि एक अचानक एक हादसा पेश आ गया मेरे साथ, इस वजह से मैं नहीं आ सका। फिर उस हादसे पर एक हादसा पेश आया तो मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तकलीफ हो गई थी, परेशानी पेश आ गई थी, जो घरेलू लाइफ टाइप की चीज़ें, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि हमारे घर में क्या हुआ था। अलबत्त मैं यहाँ आने के वास्ते नहर के पास आया तो उस वक्त कोई कश्ती वगैरह रेडी नहीं थी मुझे आने के लिए लाने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो है जो लंबे लंबे दरख्त हैं वो चिरना शुरू हो गए, वो एक हिसाब से वो जो है ना उसके पीस बन गए, और फिर उसके बाद में जो है ना वो जुड़ गए, और फिर उसके बाद वो तैयार हो गए, वो मेरी तरफ आ गए, और फिर उसके बाद में मैं उसमें बैठ गया। तो फिर मुझे ले जाके उन तख्तों ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया इस बार, इसलिए मैं आप हजरात के पास आया। तो उस आदमी ने, उस दहलिए ने जो खुदा को नहीं मान रखा, ये कहा कि वो जिस आदमी से तुम बहस करने के लिए बुलाए वो पागल हो गए। भला ये पॉसिबल है क्या दरख्त खुद ही चीरे और उसके बराबर पीसेस हो जाए? तो ये पॉसिबल है कि वो जुड़े, फिर जॉइंट भी ऐसा हो कि उसमें पानी नहीं, कुछ ना आए, उसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं, और फिर क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ से इसके पास आए और फिर उसको ले जाके उधर छोड़ें? इम्पॉसिबल चीज़ है, हो नहीं सकता। तो उन आलिम साहब ने फरमाया तो फिर मुनाजरा ख़त्म, ज़रूरत नहीं है मुनाजरे में। बोले ये क्या बात हुई? बोले ये बात हुई है कि जब ये कश्ती खुद से बन के नहीं आ सकती मेरे पास, इसमें बैठ के मैं तुम्हारे पास आऊँ, ये पूरी दुनिया का इतना बड़ा निज़ाम खुद से कैसे बन जाएगा? और यही बहस करना था, वो यूँ कह रहा था कि बहुत बड़ा हादसा हुआ, धमाका हुआ और ये सब बन गया। कभी ऐसा होता है कि कोई धमाका हुआ और ये सब इतना सिस्टमेटिक बने? नहीं हो सकता। तो फिर उसके समझ में भी बात आई कि भाई ये असल में इन्होंने जो है ना ये हिकमत स्ट्रेटेजी मुझे समझाने के लिए की है। असल में छोटे से छोटे जर्रे से लेकर इंसान के खलिए से लेकर इंसान के ब्लड सेल से लेकर सिस्टम, इतना बड़ा निज़ाम हमारे जिसमें, पूरी दुनिया का निज़ाम कैसा है, सूरज किस जगह पर अल्लाह पाक ने टिकाया हुआ है, वशम तजवील मुस्तकबिल रहा सारी का तकदीर अजीज गाड़ी, सूरज अपने ठिकाने पर है, ये अजीज और आदीम की तकदीर है। तकदीर को हमें अंदाजे से फिट करना है, एक अजीज जो कि गालिब है, एक आदीम जो कि जानने वाला है, उसको पता है कि सूरज को कहाँ होना चाहिए जमीन के ऊपर आया के, हालांकि वो कितना बड़ा है, अगर उसको ज्यादा ऊपर किया जाता तो भी यहाँ पर हयात मुमकिन नहीं, उसको नीचे किया जाता तो भी हयात मुमकिन नहीं। इसलिए फरमाया कुरान पाक में ज़ालिका तकदीर अज़ीज़ रहीम, ये अज़ीज़ रहीम की तकदीर है। ऐसे पूरे निज़ाम, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई, उसके बनाने वाले अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के बनाने की मसलहत और फायदा भी बताया, मुकर्रर फरमाया, बहुत सी चीजें बताई, बहुत सी चीजें तजुर्बे पर रखी कि तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता देगा। इंसान को इस दुनिया में भेजे जाने के मकसद को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन करके बताया। अल्लाह ने फरमाया पूरी दुनिया को मैंने ऐसे ऐसे अंदाज में बनाया है कि तुम इसको यूज करने वाले हो, तुम्हारे यूज में ये आएगी, तुम इसको यूज करने वाले हो, तुमको ये हैसियत दी मैंने। कुरान पाक में बहुत जगहों पर यह बयान है, अल्लाह ने फरमाया मुसख़्खर लकुम मा फ़िस समावाती वमा फ़िल अर्ध, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख़्खर किया आसमान को, उन चीज़ों को जो आसमानों में जमीन में, लकुम माने तुम्हारे नफा के लिए, मुसख़्खर के माने तुम्हारे ताबे करना, तुम्हारे कंट्रोल में देना, तुम्हारे तुम्हारी समझ में तुम्हारे लिए ऐसे बनाना उसको कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यही वजह है कि पूरी इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबको इस्तेमाल करता है, चाहे इससे बड़ी हो चाहे इससे छोटी हो। हमने अपने इंडिया में देखा है कि 4-4 साल का बच्चा जो है ना हाथी पर बैठ के हाथी को लेके फिर रहा होता है, 4 साल का बच्चा हाथी को कंट्रोल करता है, समंदर को ये फाड़ लेता है, पहाड़ों को ये डैमेज करके डायनामिक लगा के उड़ा देता है, लोहे को ये कंट्रोल में रखता है, लकड़ी को ये कंट्रोल में रखता है, सब चीज़ें अल्लाह पाक ने उसके लिए ऐसी बनाई। फरमाया कि तुमको मैंने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए रखा है, ये सब चीज़ें तुम्हारे इस्तेमाल में आएंगी लेकिन तुम इम्तिहान के लिए, और इम्तिहान कहेगा इम्तिहान मुझे पहचानने का, और इम्तिहान कहेगा मुझको राजी करने का, मुझे पहचानो फिर उसके बाद में मेरी बंदगी पर आओ, पहचानो और बंदगी इख्तियार करो, मेरे सामने सरेंडर करो, मुझे थैंक यू करो, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक बनाओ। इस कायनात में करने वाली अल्लाह सिर्फ अल्लाह की है, कोई उसका शरीक नहीं। इसीलिए लास्ट इबादत सिर्फ वही है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात फरमा दी कि जो जिंदगी गुजारने का तरीका मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया वो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया और उसी से मैं खुश हूँ। इन दीन अल्लाह इस्लाम, दीन और मज़हब अल्लाह पाक इस्लाम, वरदीतु लकुम अल-इस्लाम दीन, कुरान पाक मैं राज़ी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन बनाने के तौर पर, इस्लाम को मैंने तुम्हारा दीन बना दिया, इस पर मैं राज़ी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानियत से ये बात चाहते हैं कि अल्लाह के लिए आदमी अपने आप को सरेंडर करे, और अल्लाह पाक ने बहुत से पैगंबर भेजे, बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई, बहुत से सहीफे नाजिल फरमाए, नबियों की तादाद तो 124,000 के करीब आए, रसूलों की तादाद, नबी और रसूल थोड़ा सा फर्क के साथ होते हैं, रसूलों की तादाद 313 हुई, उसमें से बहुत से रसूलों पर सहीफे नाजिल हुए, बहुत सौ पर किताबें हुई। तो जो मशहूर किताबें हैं वो 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। ये कसम में बैठे हुए इसलिए बात करूँ गुजरा उधर से, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए। तो एक वक्त में तौरात आई मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर आई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। उस वक्त अल्लाह पाक के जो पैगंबर होते हैं उनकी बात मानना अल्लाह की मानना होता है, और उस वक्त जो कानून उन्होंने भेजा हुआ होता है उसको मानना अल्लाह की बात मानना होता है। तो जिस वक्त जो कानून भेजा जाए, जो नबी भेजा जाए, उसको मानना अल्लाह का इस्लाम होता है, अल्लाह का दीन होता है। आखिर में पूरे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के भेजा, और उन पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। तो अब लेटेस्ट जो मज़हब है वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इस्लाम होगा। इससे पहले का मज़हब भी अल्लाह का ही भेजा हुआ है लेकिन उस टाइम का है, उससे पहले का मज़हब भी अल्लाह का ही भेजा हुआ है लेकिन उस टाइम का है, उससे पहले का मज़हब भी अल्लाह का ही भेजा हुआ है लेकिन उस टाइम का है। तो जिस टाइम पे जो अल्लाह की बात भेजी जाती है, जो अल्लाह का नबी भेजा जाता है, उसको मानना और इससे पहले जो आए उसको भी मानना ज़रूरी होता है। इसलिए इस्लाम में ये है कि जितने नबी आए सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर किसी एक का भी इनकार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला झूठे हो जाते हैं और झूठे अल्लाह को मानने का कौन सा दीन। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम आए उनको मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम आए उनको मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के पैगंबर थे। दाऊद सुलेमान आए उनको मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के पैगंबर थे। यहया और ज़करिया आए उनको मानना ज़रूरी, चूँकि नाम के साथ आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए उनको मानना ज़रूरी, वगैरह वगैरह जितने भी पैगंबर आए। तो सबको मानना ज़रूरी होता है, ईमान लाना सबका, सब किताबों को मानना ज़रूरी होता है जो प्रूफ के साथ हमारे पास हो। मगर इन पर सिर्फ ईमान लाना ज़रूरी होता है, इनको फॉलो करना नहीं रहता। फॉलो करना पड़ता है करंट को। जैसे इस मुल्क का जो इस वक्त का कानून है, 200 साल पहले का कोई कानून है, अमेंडमेंट होकर समझे 200 साल के बाद में तब्दीली आ गई है। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि 200 साल पहले का जो यहाँ का लॉ है वो भी अमेरिकन लॉ ही है, लिहाजा मैं उसको फॉलो करूँगा, अब ये 200 साल के बाद में जो चेंजेस आए उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा, तो कौन कहेगा आपको क्या फर्मा करता है? आपको जो है ना बाहर कर दिया जाएगा, बाकी करार दे दिया जाएगा। वो था 200 साल पहले, वो था 100 साल पहले, वो था 50 साल पहले, जो भी था। लेकिन इस वक्त का जो ला है, इस वक्त के बासी को, इस वक्त के इमिग्रेंट को वो ज़रूरी होगा कि वो उसको फॉलो करो, वो माने कि हाँ भाई मानता हूँ ये तुम्हारे ला है तो मैं मानता हूँ। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, कुरान पाक वो दस्तूर है इस वक्त का। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के नबी करम है, आप क़यामत तक के लिए, कोई नबी आने वाला नहीं, आप आखिरी नबी। तो अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई उस किताब को मानना, ये फ़र्ज़ हो गया हमारा पूरी इंसानियत पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में फरमाया कि आप रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, आप काफ़तुल लिन्नास हैं, आप क़यामत तक के लिए, आप आलमी नबी हैं। वक्त के अतबार से आप क़यामत तक के लिए, जगह के अतबार से आप आलमी, अरबों के नहीं हैं खालिस, पूरे आलम के आप नहीं हैं। इसलिए अब दीन जो है ना हमारी ज़िंदगियों के अंदर कौन सा आना चाहिए? इस्लाम आना चाहिए। और फॉलोइंग किसकी होनी चाहिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। अल्लाह पाक अपने बारे में जो हमें चाहते हैं कि हम उनके बारे में जानें, तो वो जैसे उन्होंने अपनी सिफात का तारुफ कराया वैसे हमें यकीन करना है। पहले उसको जानना भी है फिर उसको यकीन करना भी है। तो इस तरीके से हमें अब ये चीज़ अपने अंदर लाने के लिए मेहनत करनी है। इस मेहनत करने के वास्ते तरबीब दी जाती है कि हमें माहौल चाहिए, इस मेहनत करने के वास्ते सीखना सिखाना चाहिए, मुजाकरे चाहिए। एक होता है नॉलेज लेना खाली, और एक होता है मिजाज बनाना। नॉलेज लेना तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन खाली नॉलेज लेने से मज़हब नहीं आया करता ज़िंदगियों के अंदर। नॉलेज मज़हब के लिए काफ़ी नहीं होता, नॉलेज एक हिस्सा है मज़हब का, ताकि मज़हब को सही फॉलो कर सके बंदा, ज़रूरी है वो भी। लेकिन अगर मिजाज नहीं आया, तबीयत बनी नहीं अंदर से मज़हब पर अमल करने की, तो बावजूद नॉलेज होने के अमल नहीं होता, चलता नहीं आता। कितने मुसलमान हैं उनको मालूम है कि इस्लाम सच्चा दीन है, वह फॉलो नहीं करते। नॉलेज हो लेकिन अगर अंदर से तबीयत कुछ बनी हुई ना हो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बाहर से सूरज की रोशनी हो लेकिन आदमी अंधा हो, उस रोशनी से भरा हुआ है पूरा पूरा दिन, वक्त पूरा भरा हुआ है, दिन की रोशनी है लेकिन आदमी अंधा है, नहीं चल रहा। तो नॉलेज के साथ साथ एक चीज़ चाहिए अंदर, जिसको ईमान की कुव्वत कहते हैं, एक नूर होता है, एक अल्लाह पाक की मारिफत का रगबा होता है, अशमत का रगबा होता है, आखिरत की फिक्र होती है, ध्यान होता है। तो वो जो चीज़ चाहिए उससे आदमी के अंदर एक तबीयत बनती है कि मुझे तो फॉलो करना है। वो तबीयत बनने के वास्ते, वो मिजाज बनने के वास्ते मेहनत चाहिए, उसके साथ नॉलेज को जमा करना होता है। वो मिजाज कब बनेगा? वो जब दीन के माहौल में रहेंगे तब बनेगा, मस्जिद वाले माहौल में रहेंगे जब बनेगा, आखिरत के तस्करों में रहेंगे जब बनेगा, अल्लाह पाक की बड़ाई सुनने सुनाने में रहेंगे जब बनेगा, 24 घंटे वाले आमाल में अपने आप को दीन पर रखने में, दीन के माहौल में रखने में, दुनिया की फसाद और दुनिया की गंदगी और दुनिया की गफलतें और दुनिया की ख्वाहिशात, उनसे थोड़ा सा अपने को इलाज के तौर पर, जैसे आदमी दवाखाने में होता है, इलाज के तौर पर अपने आप को माहौल में रखेगा तो उस माहौल में रहने से अंदर वो मिजाज बिल्ड होगा और फिर उसके साथ आदमी को सही नॉलेज देना पड़ेगा उलमा किराम से। वो उलमा किराम बताएंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या बातिल है। इसलिए हर बड़े को, हर छोटे को, नौजवान को, अधेड़ उम्र को, जो फारिग है उसको, जो फारिग नहीं है उसको, हत्या की मर्दों को, हत्या की औरतों को, हर इंसान को इन दो प्रासेस से गुजरना होता है, तो उसके अंदर ईमान की कुवत आती है और ईमान पर अमल करना आसान होता है, उसी को हम तबलीग की मेहनत कहते हैं। इसलिए इस बात की बात चलाई जाती है कि हम सबको तबलीग के लिए वक्त निकालना चाहिए, खुरूज करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, वक्त फारिग करना चाहिए अपना। अगर हम वक्त फारिग करेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, लोगों के सामने बात करेंगे दीन की, दावत देंगे उनको अल्लाह की तरफ और अल्लाह की बड़ाई सुनाएंगे, अल्लाह की बड़ाई सुनेंगे, अल्लाह का तारुफ इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे तफसीली तौर पर, तो हमारा मिजाज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए तरतीब है कि हम 4 महीने लगाएं, 40 दिन लगाएं, हम जो है 3 दिन लगाया करें, हम लोगों से मुलाकातें किया करें, हम घर में तालीम करें, मस्जिद में तालीम करें, हम फिक्रों में जुड़ें, तो ये पूरा मकामी तौर पर खुरूज करके सफ़र करके करने का एक काम है जो हमारे बड़ों ने हमारे सामने रखा हुआ है। इस तरतीब से हम लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, हमें ये इरादा करना चाहिए कि हम इस तरतीब में ज्वाइन करें, सब करेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साथ फरमाए। अच्छा भाई, लो तो
हबु इंशाअल्लाह ताला तुरा
عندنا 3 أيام الأسبوع المقبل إن شاء الله.
يقول في الإنجليزية يقول في
إن شاء الله we can tensions إن شاء الله. So how we can practice this? We need to make effort as the Mufti Sabri said. And this effort should be in the field. We go outside and practice. This practically.
We have Sheikh Mushtaq Ali Ahmad every year 4 months.
جزاكم الله ما شاء الله تقبل الله.
آمين. So the taqaza is 3 days next week. That's the current taqaza, which is the
four months every year. Inshallah. Take dua. Allah accept.
ما شاء الله.
Is can
19th
Abdurrahim by 4 months
40 cash September
cash
Abdurrahim
from Fort White is cash for 4 months
inshallah.
Nizamuddin leaving on Sunday inshallah.
Taqabbal Allah, Allah qubool farmaye.
Amin amin amin. Allah qubool kare. Allah
farmaye
na sir फोर्ट वाइन से हम गए थे, तश्कील करे थे ना साहब, जब हुई थे वो हुए थे, जब लिख के बोला था मैं 4 महीने चल जाता हूँ, जुलाई एंडिंग थे, कल आ गए, टिकट भी ले लिया, आज टिकट ले लिया, संडे ही इज लिविंग फॉर इंशाल्लाह टू दिल्ली।
माशाल्लाह साहब भाई, माशाल्लाह तकब्बल
इंशाल्लाह।
Allah qubool kare.
How about our brothers inshallah in the back?
40 days September.
Allah accept. And Allah reward for the niyat we make, alhamdulillah. It is only intention, alhamdulillah. Anybody can give, alhamdulillah. Nothing to worry. That we will.
Yes, brothers.
Inshallah, 4 months.
When inshallah?
Karachi inshallah. Kab se? Jaldi inshallah. As soon as possible.
Yes, what else inshallah? So inshallah, this is like further intention. So by to get the ability to go, that needs some training slowly, slowly. Either the scholars, they ascribe for us the efforts every day we have to do for our iman. We do little sacrifice every day. This will give us the ability to do bigger sacrifice.
Inshallah.
But if we cannot do small sacrifice, bigger sacrifice became impossible. So every day we need to make mashura. So we need to sit and ponder and think how the deen increase in our life and the life of our masjid and the life of our locality. How every man be connected to the masjid, every woman be connected to the ta'lim, the weekly ta'lim, every kid be connected to the madrasa or maktab. And every day we need to free some time to visit the Muslims in our locality.
Inshallah.
Because may the brothers, if you don't know the condition of Muslims in our locality, means may the brothers, we are not, you know, having the concern, the real concern and the real iman. Because we cannot have complete iman till we love for our brothers what we love for ourselves. If my neighbor, if my brothers, they are not obeying Allah, they are not coming to the masjid, they are not practicing deen, and I'm not visiting them, that will affect my iman, and that will affect my deen, and the deen of my children, and the deen of my family. It's like the fire. If the fire next door, if I don't make effort to call it off, it might come to my own home. So for this, my dear brothers, the elders, they say every day, we need to spare at least 2.5 hours just to visit each and every home in our locality and meet each and every Muslim brothers and give him encouragement and explain to him and try to bring him to the amal of the masjid. And every day we need to do ta'lim, read from the book of Fada'il, virtues. Because we are hearing every day the virtues of dunya, the virtues of others than Allah, the virtues of the material. So our heart gets so much encouraged to run after the material. But we have to sit every day to do the ta'lim of fada'il, the virtues of akhirah, the virtues of a'mal of deen, the virtues of the a'mal pleases Allah, the virtues of sunnah. So this, the elders and scholars, they say, minimum half an hour every day. You have to sit and read from the book of fada'il. So we have it in our masjid after Salatul Maghrib every day. And every week, we do local jawla with all the brothers to get together and try to make visitations in our locality. And every week we do second jawla, we go to different localities where the amal of da'wah is not established to try to establish this amal over there. And every month, minimum go 3 days in the nearby cities where there is no amal of da'wah, try to establish this amal in nearby cities for 3 days to 10 days. And every year, minimum go 40 days to 4 months to farther places which we cannot cover in 3 days, other far cities, other far countries, to establish the same amal, inshallah. So everybody, inshallah, trying to do this.
Inshallah.
اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وشر لا تقع فينا اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين